अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। सुनो, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं। वही ज़िंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। इसके बाद अब सूरत यूनुस की खूबसूरत तरीन आयात। अगर आप नूरुल कुरान का मोटो देखें तो उसके ऊपर भी आयत लिखी हुई मिलेगी कि इसको, इस इदारे का नाम नूरुल कुरान क्यों है। थीम आयत यही है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। एक एक लफ्ज़ को अपने दिल पे लीजिए और दुआ करते हुए सुनिए कि अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। इस पर एक तवा सीडी भी है, कुरान मेरे दिल की बहार। आप सुन सकते हैं कि कुरान असल में है क्या और हम इसको क्या समझे बैठे हैं। अब सुनिए इसका तर्जुमा। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। कहाँ से आई है ये? रब की तरफ से। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है। कौन से अमराज? दिल की बीमारियाँ, कुफर की, निफाक की, शर्क की, दुनिया की मोहब्बत की बीमारियाँ। और जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। जो इस किताब को कबूल कर लेता है, ये किताब उसके लिए एक ठंडी हवा बन जाती है, एक बादल बन जाती है, रहमत बनती है। ऐ नबी, कहो कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ जो उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो लोग समेट रहे हैं। आप खुशियाँ मना रहे हैं इस कुरान के मिलने पे? अल्लाह ताला कह रहे हैं दुनिया की सारी जमा करदा चीज़ों से ये बेहतर है। अमूमन देखिए लोग क्या जमा करते हैं। औरतों को तो घर के बर्तन और कपड़े, ज्वेलरी जमा करने का शौक़ होता है ना। मैंने देखा है कुछ लोग तो बिल्कुल बेकार चीज़ें भी जमा कर रहे होते हैं। किसी को स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ है, किसी को जूतियां जमा करने का शौक़ है, 200-200 जोड़े जूतियों के पड़े हुए, किसी को चूड़ियां जमा करने का शौक़ है, कोई पत्ते सुखा रहा होता है। सारी जमा शुदा चीज़ों को रखें सामने और दूसरे पलड़े में अल्लाह की बात सुने। हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो जमा करते हो। इसीलिए देखिए कि अल्लाह की पुकार पे अपना घर का पूरा सामान देना भी आसान लगता है, क्योंकि दिल में मोहब्बत हुआ है, प्रायोरिटाइज कर रहा है अल्लाह ताला हमें। ये नहीं कह रहा कि ना करो मोहब्बत, चीज़ें जमा ना करो, खाओ नहीं, पियो नहीं, घर नहीं बनाओ, लेकिन इसको अपर हैंड रखो, इसको ऊपर रखो। जिसकी ज़िंदगी में कुरान सबसे ऊपर आ गया, आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी इसके हुक्मों के मुताबिक होगी। और अल्लाह हमें तौफीक दे, अपना मुहासबा भी कर लेते हैं। क्या मैं कुरान की इस नेमत पर खुशियाँ मनाती हूँ? क्या मुझे अपने ऊपर रहम तो नहीं आ रहा कि मैंने क्यों हामी भर ली थी इस कोर्स को करने की? ऐ नबी, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये सोचा? अच्छा, जहाँ ऐसे जुमले आए ना तो फौरन इसको अपने ऊपर लें कि मैंने कभी सोचा कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तो तुमने खुद ही किसी को हलाल और किसी को हराम ठहरा लिया। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाज़त दी थी या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं उनका क्या गुमान है कि क़्यामत के रोज़ इनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर ऐसे लोग हैं जो शुक्र नहीं करते। मुहासबा, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ कि ना शुक्री हूँ? ऐ नबी, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, इन सब के दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। सोचिए ज़रा, जितनी देर से आप और मैं यहाँ बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपको देख रहा था। कैसी फीलिंग्स आती हैं? कितना प्यार आता होगा अल्लाह ताला को आपके ऊपर कि आपके रोज़े की हालत में आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तवज्जो रखे हुए हैं, आपको बिल्कुल अफसोस नहीं है, आप बिल्कुल नहीं थके हुए, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और जिसने अल्लाह की निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर लिया, वो लोगों की निगाहों से बेनियाज हो जाता है। कोई ज़र्रा बराबर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं, ना छोटी और ना बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। तो फिर हम कहाँ होंगे? जब बंदा अल्लाह की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करता है ना, उसके बाद जो कैफियत होती है उसका तذکرہ अगली चंद आयतों में। इंतहाई खूबसूरत आयात, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں بشارت اور بشارت ہے. اللہ کی باتیں نہیں بدل سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. آج دنیا ڈپریشن کا شکار ہے. ٹینشن کا لفظ ایسے لگتا ہے کہ بچے بچوں پہ. مجھے حیرت ہوتی ہے جب چھوٹے بچوں کو دیکھوں اور پوچھوں، اور مائیں کہتی اس کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، کل اس نے اسکول جانا ہے، کل سے اس کی روٹین بدلنے والی ہے. میں کہتی ہوں آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے اس آیت میں ٹینشن فری انسان کا تعارف کرایا ہے. اللہ کی دوستی، ایمان اور تقویٰ. آپ کر کے دیکھیں، آپ کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ لوگ دیکھیں. کسی کا کال میں نے کہیں پڑھا، کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل میں جو ٹھنڈک اور سکون اور خوشی ہے نا، اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے تو فوجیں لے کر حملے کرنے آ جائیں اور اس سکون اور خوشی کو لینے لگے.
اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں، سوچیں کس پہ باتیں بناتے تھے لوگ نبی پہ، تو کیا میرے پہ نہیں بنائیں گے؟ آپ پہ کل نہیں بنائیں گے؟ مبارک ہیں ان لوگوں پہ جن پہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور ان کو صبر کا موقع دیتے ہیں. اور ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں کہ چلو دعائیں مانگو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے. کہ آپ کیا کریں ان کی باتوں کو سن کے، آپ کو رنجیدہ نہ کریں. ڈونٹ بی سیڈ. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یقین بات، اللہ نے بہت بڑی بات یہاں کہہ دی. کہ ہم اکثر اپنی عزت کے جانے کے خوف سے پریشان ہو جاتے ہیں، عزت نہیں جاتی، حق پہ ہیں تو عزت نہیں جائے گی. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اگر ہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اس میں اپنا نام لکھے ہیں نا ہم زمین پہ بستے. میں اللہ کی بندی ہوں، باندھی ہوں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس رائیاں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ضرور جنت میں جانا ہے. آئی تھنک آئی ول گو ٹو جنت، آئی ایم شیور میں ضرور جاؤں گی. کہا نہیں، یہ تمہارا خیال ہے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے نبی کی دعوت کو سنتے ہیں، یعنی نبی کی پکار کو. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس کے قول کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے اپنے علم میں نہیں؟ اے نبی، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لے لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ جو کرتے ہیں وہی بھریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تم کو غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. یہاں دیکھیے گا کہ نبی بھی بات کرتے تھے تو لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. تو حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، تمہیں اگر میرا یہ اللہ کی طرف بلانا ناپسند ہے تو کیا کرو؟ تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ سوچ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. یہاں سے اب دیکھیے کہ نبیوں کا بے لوس خدمت کرنا ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کے طرف بلانا لوگوں کو بغیر کسی دنیاوی صلے کے، بغیر کسی امید کے کرتے تھے. और यही वो चीज़ होती है जो किसी काम के अंदर इख़लास भी पैदा करती है और इंसान को जुरतमंद भी बनाती है। तो मुझे हुक्म दिया गया है कि कोई ख्वाह माने या न माने, मैं ख़ुद मुस्लिम बनकर रहूं। उन्होंने इसे छुटला दिया और नतीजा ये हुआ कि हमने इसे और इन लोगों को जो इसके साथ कश्ती में थे बचा लिया और इन्हीं को ज़मीन में जानशीन बनाया और इन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को छुटलाया था। बस देख लो कि जिनको आगाह किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर न दिया तो इनका क्या अंजाम हुआ। यहाँ से अब देखिए कि दोबारा अब अंबिया कराम के किस्से शुरू हो रहे हैं जिनको हम थोड़ा सा सूरत अल अराफ़ में देख चुके। बार बार अंबिया कराम के किस्सों का आना क्या साबित करता है कि दीन का रास्ता चाहे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ जाए, बल्कि उसके बाद भी हर आने वाले दौर में जब भी लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाएगा तो लोगों का रवैया अमूमन एक सा होता है। तो अल्लाह ताला अपने नबी की तसल्ली करते हैं कि देखिए आप गम ना कीजिए, आपको तब इनको बताते हुए सिर्फ 10, 12, 13 साल ही हुए हैं, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो 950 साल तक बुलाते रहे। पहले साहिब शरीयत नबी थे और अल्लाह ताला ने इनको लोगों की रहनुमाई के लिए चुना था, लेकिन लोग अमूमन रहनुमाओं को और अपने खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से पता चले कि एक बंदा अपने आप को अल्लाह ताला की रहनुमाई से महरूम कर देता है और सिर्फ इस बात से अना का शिकार हो जाए कि जिस तरीके पे मैं पहले था बस मुझे उससे क्यों हटाते हो। तो अब यहाँ इन वाक़यात को सुनते वक्त हम सब अपना मुहासबा भी करें, क्या मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की नीयत करती हूँ? क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह अगर मुझे एक तवील अरसे तक लोगों को दीन की दावत देनी हो तो मैं हिम्मत तो नहीं हारने लगती? फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को इनकी कौमों की तरफ भेजा और वो इनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए, मगर जिस चीज़ को उन्होंने पहले छुटला दिया था फिर मान कर न दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। ये भी इंसानों की एक अजीब कमज़ोरी है कि एक दफ़ा उनकी ज़ुबान से जब नो निकल जाती है तो उसको यस में बदलवाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग फिर दिल से तस्लीम भी कर लेते हैं हक बात को, लेकिन इस वजह से नहीं मानते कि फिर इसके मानने की वजह से हमें नीचे जाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। हक का रास्ता कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा करने के लिए नहीं होता, ये तो लोगों को जहन्नुम से निकालने के लिए होता है। और हर वो बंदा जिसको अपनी मौत चाहत होगी और जो मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम का मुंतज़िर है, फिर वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेगा कि लोगों को मैंने माना है कि या लोगों ने मुझे माना है। वो तो हर वो नेकी करना चाहेगा जिस नेकी से उसकी आखिरत अच्छी होगी, और हर उस काम से अपने आप को रोकना चाहेगा जिस काम की वजह से वो अपने आप को जहन्नुम में जाता महसूस करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हक की तरफ चलने वाला बना दे और ऐसा ना हो कि हम भी हदों से भट जाएँ और हमारे दिलों पर मोहरें लग जाएँ। फिर इनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया। बड़ों का अपना बड़ापन हक के रास्ते से रोक लेता है, और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक इनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। क्यों जादूगर कहते थे लोग नबियों को? इसलिए कि नबियों के पास हक होता था, और हक की एक तासीर क्या है कि ये दिलों में बहुत जल्दी असर करता है। आप दुनिया में भी देखें, चार लोग झूठ बोलेंगे ना, उसके मुकाबले में एक सच्चा इंसान आके सच बोल देगा तो आपको वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब लोग हक की बात को पेश करते हैं तो उसका दिलों पर असर होता है। हक को सुन के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, सातवें पारे की हमने आयत में पढ़ लिया। लेकिन जो नबियों के मिशन से लोगों को हटाना चाहते थे या जिनको ये शक होता था कि नबियों की तालीमात जो हैं वो अब हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक ऐसी पाबंदी लगा देंगी और हम अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकेंगे, तो वो एक प्रोपेगंडा कर देते थे। कल तो कहते थे जादूगर है, आज कह देते हैं फलां जो वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, फलां तो माइंड सेटिंग कर देते हैं, और वो तो ब्रेन वॉश कर देंगे तुम्हारा। आज भी कितने साथी हैं जो हक के रास्तों से सिर्फ ये ख्यालात देकर रोक लिए जाते हैं कि नहीं तुम फलां की बात ना सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तुम्हारी पिछली सोच से ना बदल दें। इसके लिए फिर देखा गया कि लोग परेशान भी होते हैं, दूसरों को ऐलानिया या छुपा कर किसी भी तरीके से हक से रोक लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का भी एक बेलाक किस्म का असूल है कि जिसको उसने सुनवाना होता है वो सुनवा के रहता है। तो हम यहाँ अपने लिए एक मुहासबे का नुक्ता नोट करेंगे जो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारे काम आएगा, और वो क्या कि जब कभी मुझे दीन की दावत मिलती है तो क्या मैं उसको सिर्फ ये सोचकर झुटला तो नहीं देती कि ये मुझे मेरे तरीकों से हटा देंगे। नबी सल्लम ने जब मक्का में काम शुरू किया तो उस वक़्त जो मक्का के सरदार और जो वहाँ दीन के नाम पे चंद लोग थे वो अपनी धाक लोगों के दिलों में बिठाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी की दावत तो इतनी सच्ची है कि ख़ुद बहुत दिलों को मोह लेती है, तो उन्होंने एक प्रोपेगंडा करना शुरू कर दिया और वो ये था कि कोई इनकी बात ना सुने वरना उस पर जादू होता है। तो तुफैल दौसी एक बहुत बड़े सरदार थे अपने कबीले के, वो हज के सिलसिले में मक्का आए। जब वो मक्का के रास्तों से गुजरे तो वहाँ मक्का वालों ने अपने कुछ लोग बिठाए होते थे और घर आने वाले को थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वो कहते, देखो तुम हमारे शहर में आ रहे हो, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, हज भी करोगे उमरा करोगे, बस एक छोटी सी हम तुम्हें बात बता दें कि आजकल हमारे शहरों में एक जादूगर आया हुआ है, दीवाना और मजनू, कुछ ना कुछ कहते और जो उनके कान भरते अल्लाह के नबी सल्लम के ख़िलाफ़। तो इनके भी कान भर दिए तो फैल दौसी के, कहते मैं इतना उनके नेगेटिव प्रोपेगंडे से डर गया कि हाय हाय वो जादूगर है, उसकी बातें मैं सुन लूँगा तो मेरा ये हाल होगा, और कानों में रुई भर ली कि ना मैं उसकी बातें सुनूँ ना मेरे ऊपर उसका जादू चले। लेकिन वही हुआ जिससे लोग डरते हैं अमूमन, कि नबी सल्लम जब हरम में बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे तो ये पास बैठे थे, तो ऐसे ही दिल में ख्याल आया, लोग मैं इतना बड़ा सरदार हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि बातों में आ जाऊँगा, मैं इतनों के फैसले करता हूँ, मैं इतने मामला चलाता हूँ, लो ज़रा मैं सुन के तो देखूँ ये क्या कहता है। और कहते हैं कि मैंने एक कान की रुई खोल दी, अल्लाह के नबी की ज़ुबान से प्यारा कलाम उतरा। हम लोग तो आज अरबी कुरान को समझ नहीं पाते ना, हमें तो उर्दू तर्जमे इसीलिए तो सीखने पड़ते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा उर्दू समझ जाते हैं तो फिर उसको इंजॉय करते हैं अरबी तिलावत को भी, लेकिन वो लोग तो अरबी लफ्ज़ों को समझते थे। सोचिए उनके दिलों पर कुरान का क्या असर होता होगा। और वही हुआ कि अल्लाह के नबी का थोड़ा सा कलाम कानों में उनके गया, यानी कुरान को सुना, तो उस वक़्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कानों की रुई निकल गई, गए पूरी बस्ती को तबलीग की पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बाकी लोग जो भी थे जो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं मूसा के ज़रिए से हक बात ना आ जाए, फिरौन के डर से और ख़ुद अपनी कौम के बड़े लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन इनको अजाब में मुबतला कर देगा। और वाक़या यह है कि फिरौन ज़मीन में गलबा रखता था और वो इन लोगों में से तक जो किसी हद पर नहीं रुकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, लोगो अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इस पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, ला तजल न फितना तल्लिल कौम ज़ालिमीन, हमें ज़ालिम लोगों के लिए फितना न बना और अपनी रहमत से हमको काफिरों से निजात दिला। इसमें काफिर कौम के लिए फितना बनने और ज़ालिमों के लिए फितना बनने से क्या मुराद है? आप देखिए कि हर दौर में ये प्रोपेगंडा तो आम है ना कि लोगों के मुसलमान होने की वजह से दूसरे लोग उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती करते हैं। तो फितने का एक मानी तो ये होता है कि अल्लाह ताला तो हमारा वो हाल ना करना कि दूसरे लोग देखकर ये कहने लग जाएं कि शायद हमारे खुदा ने हमको छोड़ा हुआ है। बाज़ लोग मक्का वालों को जब तकलीफ़ों में देखते तो साथ कहा करते थे, कहते थे कि देखो अगर तुम्हारा रब है तो आके तुम्हें बचाता क्यों नहीं है। तो हम सबको अपने लिए ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि अल्लाह से हम ये दुआ करें कि अल्लाह दीन के नाम पे कोई इतनी बड़ी मुश्किल ना आए कि लोगों की हंसी मजाक बन जाए, और कहीं मुसलमानों पर इज्तमाही तौर पे ऐसी कोई तकलीफ़ और मुसीबत और कोई आफत ना आ जाए कि जिसकी वजह से दूसरे लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इनका रब है या ये अपने रब के मानने वाले हैं तो वो इनकी मदद क्यों नहीं करता। हालांकि दुनिया में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को बिल्कुल तकलीफ़ दे दे और मुसलमानों को हमेशा खैर दे, लेकिन हम ज़ाहिरदार लोग हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि अल्लाह हमारी वजह से दूसरे लोग दीन से ना दूर हों तो ऐसा ही कर दे। वनजिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन,